તારીખ 2/8/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 120
શ્રીમદ રાજચંદ્ર સંતા હૈ સમ્યક દર્શન કે નિવાસ કે सर्वोत्कृष्ट स्थान रूप 6 पद का ये पत्र है। 2 पद का स्वाध्याय हो गया है। 3रा पद में कहते हैं कि आत्मा करता है। यहाँ कर्ता का अर्थघटन इस संदर्भ में है कि जो कोई क्रिया है इसका कोई करने वाला होता है। क्रिया एक परिणाम है, परिणाम की फेरबदली को क्रिया कहते हैं, परिणाम के परिवर्तन को क्रिया कहते हैं। और जहाँ क्रिया होती है वहाँ कोई पदार्थ उस क्रिया को धारण करने वाला होता है, उस पदार्थ को कर्ता कहते हैं। और उस पदार्थ के परिणाम में एक परिणाम से दूसरा परिणाम का होना बदलना उसको क्रिया कहते हैं। यहाँ आत्मा कर्ता है माने कर्ता बुद्धि वाली बात नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव में रागादि की कर्ता बुद्धि है, देहादि संयोग के परिणाम की भी कर्ता बुद्धि है, ऐसा कर्ता बुद्धि वाला आत्मा है वो कहने का यहाँ बिल्कुल आशय नहीं है, वो अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए आत्मा करता है ऐसा कहते हैं तो वो बात हमारे परिणाम में हमारे समझ में बीच में नहीं आनी चाहिए। कर्ता बुद्धि वाली बात बीच में नहीं आनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि आत्मा करता है, सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है। अर्थ क्रिया मैंने प्रयोजन भूत क्रिया, अर्थ मैंने प्रयोजन यानी अर्थ मैंने भावात्मक। सर्व परिणाम सर्व पदार्थ है वो अपने स्वभाव को लिए हुए हैं पर उस स्वभाव के अनुसार अपने अपने परिणाम वो करते हैं। कल बात चली थी कि सभी पदार्थ में परिणाम शक्ति है, वो क्षोभ द्रव्य में है, सामान्य शक्ति है, सामान्य स्वभाव है। आत्मा में भी परिणाम शक्ति है, वो शक्ति के कारण से सभी आत्माएं निरंतर सदाए परिणमन करते रहते हैं। उसको परिणमन के रोकने के लिए भी कोई परिस्थिति बन सकती नहीं है। किसी भी पदार्थ का परिणाम हम रोक दें, बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे परिणमन से वो बात अनुभव गोचर रूप समझ में आ जाएगी कि हमारे परिणाम भी हम रोक सकते नहीं हैं। 1 सेकंड के लिए ज्ञान करना छोड़ दो, जानना छोड़ दो, रागादि करना छोड़ दो, नहीं होगा। क्योंकि आत्मा जब परिणाम स्वभावी है तो आत्मा के सभी गुण भी परिणाम स्वभावी है, इसलिए सभी गुण का परिणाम समय समय होता रहता है। कुछ न कुछ परिणाम क्रिया सहित ही सर्व पदार्थ देखने में आ रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर से सभी पदार्थ कुछ न कुछ परिणाम करते हुए देखने में आ रहे हैं। आप देखिए अखबार में कभी ऐसी बात नहीं आएगी कि आज हमारे पास कोई समाचार नहीं है, इसलिए हमारा अखबार आधा ब्लैंक है या पूरा ब्लैंक रहा है, खाली रहा। हाँ, क्यों? कि सारे विश्व में घटनाएं घटती ही रहती है। एक सेकंड, एक दिन क्या, एक सेकंड भी खाली नहीं कि कोई घटना नहीं घटती हो। सारा विश्व परिणामशील है, ये तो प्रत्यक्ष तौर से देखने में आता है कि जगत परिवर्तनशील है, एक सी परिस्थिति कहीं भी रहती नहीं है। देखिए, कहीं कहीं तो ऐसा होता है जहाँ समुन्द्र है, पानी है, वहाँ जमीन आ जाती है, और जहाँ जमीन है वहाँ पानी आ जाता है। इतना भी बड़ा फेरफार होता है कि नहीं होता है? इसलिए आत्मा भी क्रिया संपन्न है, इसलिए आत्मा भी क्रिया करने वाला है, क्रिया उसमें होती ही रहती है। क्रिया संपन्न है इसलिए करता है, करता क्यों है? क्रिया संपन्नता के करता है। यहाँ रागादि का कर्तापना, संयोग का, पर पदार्थ का कर्तापना, वो बात इधर नहीं है। क्रिया संपन्नता के कारण से आत्मा करता है, और जो क्रिया है वो आत्मा का कार्य है या कर्म है, उसको कर्म भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं, और क्रिया भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, और पर्याय भी कहते हैं। ये सब एक अर्थ है। यहाँ तक तो कल चला था। यह कर्तापना त्रिविद श्री जी ने विवेचन किया है। जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा ने ये क्रिया संपन्नता का तीन प्रकार विवेचन में दिया है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है कि तीन प्रकार से कर्तापना आत्मा का है। पहले लिया स्वभाव, परमार्थ से, परमार्थ से मैंने वास्तविकता से या आत्मकल्याण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वभाव परिणति से निज स्वरूप का करता है। ये आत्मा का मूल स्वभाव है। रागादि का अकर्तापना, लेकिन स्वभाव परिणाम का तो वो करता है ही, क्योंकि ऐसा ही इसका स्वभाव है। सम्यक दर्शन रूप परिणमन करना तो आत्मा का स्वभाव है, तथागुण का स्वभाव है, मैंने आत्मा का स्वभाव है। सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान रूप परिणमन करना वो भी आत्मा का स्वभाव है। वितरागता रूप परिणमन करना वो भी आत्मा का स्वभाव है। तो कहते हैं कि परमार्थ से स्वभाव परिणति रूप, ये स्वभाव परिणति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि वितरागता आदि, उस रूप परिणमन करना, और निज स्वरूप, ऐसे निज स्वरूप रूप परिणमन करना, वो परिणमन का आत्मा करता है। ऐसा परिणाम की क्रिया है, इसका कर्ता आत्मा है। परिणाम की क्रिया हो और इसका कोई कर्ता न हो, ऐसा बन सकता नहीं है। ये प्रवचन सार का खास विषय है।
यहाँ के दूसरों को पकड़ सकते हैं।
अनित्य नित्य को दर्शा के चला जाता है। क्या है वो, इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तो नहीं आया है, सभी बात तो स्मरण में रहती भी नहीं, लेकिन हमारे चर्चा में वो बात आती थी कि ये जो क्षणिक पर्याय उत्पन्न होती है और एक समय में व्यय भी होती है, तो वो क्या करती है कि हमको ऐसा लगता है तो वो आती है और ध्रुव को दिखा के चली जाती है। क्या कहते थे, कोई इसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। पर्याय की प्रयोजनभूत क्रिया क्या, कौन सी, तो पैदा होती है, ध्रुव को दिखा के चली जाती है। उसको ध्रुव को दिखाना उतना इसका कार्य है, तो अपने को नहीं दिखाती, वो ध्रुव को देखती है और ध्रुव को दिखाती भी है। तो परमार्थ से, स्वभाव परिणति से निज स्वरूप का करता है, अपना स्वरूप रूप परिणमन करना, ऐसा उनका स्वभाव है। और आत्मा को स्वभाव से देखो तो ऐसा ही है आत्मा, स्वभाव से नहीं देख सको तो आपको दूसरा दिखाई देगा आत्मा, जो तो राग का करता है, शरीर आदि संयोग का, पर पदार्थ का करता है, ऐसा देखने में आएगा। कब, फिर स्वभाव रूप नहीं देखोगे तब। स्वभाव रूप देखने से बात बदल जाएगी। परमार्थ से, स्वभाव परिणति से परिणति रूप निज स्वरूप का करता है, और व्यवहार से, परमार्थ से मेरे निश्चय से ऐसा है, वास्तविकता से ऐसा है, और व्यवहार से, और वो भी अनुपचरित व्यवहार से। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, उपचरित व्यवहार और अनुपचरित व्यवहार, ये शास्त्र की परिभाषा है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि जो एकदम समीप होते हैं उस व्यवहार को अनुपचरित कहते हैं, और थोड़ा दूर सा होता है उसको उपचरित कहते हैं। और उसके भी भंग भेद बहुत प्रकार के हैं शास्त्र में, लेकिन सामान्य अर्थ उतना है। अनुपचरित कहो तो एकदम समीप, उपचरित कहो तो इससे थोड़ा दूर। लेकिन जो कभी अनुपचरित है उसको भी उपचार कहते हैं, तो इससे कोई समीप वाला को अनुपचार कहेंगे। जैसे शुद्ध सहजात्म स्वरूप में गुण भेद है, बहुत समीप है, और पर्याय भेद थोड़ा सा दूर है इससे, क्योंकि पर्याय भेद विचलित अंग है और गुण ही गुण भेद है वो अविचलित अंग है। तो गुण भेद आत्मा में एक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे गुण है, तो अनुपचरित व्यवहार का विषय है। जब जो आत्मा में पर्याय है वो उपचरित व्यवहार का विषय है। फिर जिसको उपचरित कहा उसमें शुद्ध पर्याय है, वो अनुपचरित व्यवहार का विषय है। रागादि पर्याय है जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, वो उपचरित व्यवहार का विषय है। उसमें भी जो बुद्धिपूर्वक है वो उपचरित है, अबुद्धिपूर्वक है राग वो अनुपचरित है, ऐसे बहुत से भंग भेद है। लेकिन वो बात रही शास्त्र ज्ञान की, अपने को खास इसका प्रयोजन नहीं है। अनुपचरित व्यवहार से उस बात शब्द आया, इसलिए थोड़ी बात बता दिया। यह आत्मा द्रव कर्म का करता है, तो द्रव कर्म और नो कर्म में द्रव कर्म समीप है इसलिए अनुपचरित लिया, और नो कर्म दूर है इसलिए उसको उपचरित लिया। फिर से अनुपचरित व्यवहार से यह आत्मा द्रव कर्म का करता है, और उपचार से घर नगर आदि का करता है। किसी ने घर बनाया तो उपचार की बात हो, दूर की बात है, लेकिन अंदर में द्रव कर्म का जो बंधन होता है, द्रव कर्म को बांधता है जीव, तो उसका कर्ता बोला जाता है। द्रव कर्म को प्राप्त किया और घर को भी प्राप्त किया, घर बना तो घर को भी प्राप्त किया और कर्म बंधा तो कर्म को प्राप्त किया, दो में से कौन समीप है, ये द्रव कर्म समीप है। घर नगर आ तो नो कर्म है, उतना समीप नहीं है, क्योंकि आत्मा जहाँ जहाँ जाएगा संचित कर्म साथ में आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ घर नगर साथ में नहीं आएगा, वो दूर है। इसलिए दोनों में वो निमित्त है, कर्म बांधने में भी निमित्त है और घर बनाने में भी निमित्त है, लेकिन एक में अनुपचार किया दूसरे में उपचार किया। नय ज्ञान बहुत था, बहुत सूक्ष्म नय ज्ञान था, तो जहाँ जो नय का प्रयोग करना है वो करते थे। क्यों अर्थ क्रिया संपन्न में वो बात आ गया, परिणाम की क्रिया। परिणाम दो तरह का, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध में भाव कर्म आ गया, इसलिए वो बात नहीं लिया। ज्ञानी थे ना, जो विषय का प्रतिपादन करते थे बहुत व्यवस्थित रूप से करते थे। प्रतिपादन की जो शैली है, व्यवस्था है, और कभी कभी क्रम का निरूपण करते हैं, फैंटास्टिक का बात है, सामान्य बात नहीं है वो, असामान्य बात है। श्री जी ने ऐसा विवेचन किया है, अपने परिणाम, कर्मरूप परिणाम और नौ कर्मरूप परिणाम, तीन प्रकार का कर्तापना है शास्त्र में आता है। तो जो कर्म का कर्तापना आता है वो तो अनुपचरित व्यवहार से आता है, और संसार के घर नगर आदि कोई भी कार्य, व्यापार व्यवसाय कुछ भी हो, शरीर का कार्य हो, तो नौ कर्म बोले जाते हैं, वो तो उपचार से बोलने में आता है। यानी वास्तविकता से दोनों का कर्ता नहीं है, वो बात उसमें स्पष्ट हुई कि व्यवहार से कर्ता है तो निश्चय से कर्ता नहीं है, मैंने खरेखर कर्ता नहीं है, वो बात उसमें आ गई। इस प्रकार से आत्मा कर्ता है, अपने परिणाम का कर्ता है वो जानना, दूसरे पदार्थ का कर्ता है ऐसा नहीं जानना, लेकिन लौकिक में, लोक व्यवहार में बोला जाता है ऐसा जानना। हमने खाना खाया, भोजन कर लिया, ऐसा ज्ञानी भी बोलेंगे, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी बात नहीं है। जो लोक व्यवहार से बोलने में आता है रूढ़िवश, ऐसा बोलेंगे। ज्ञान में तो ऐसा है कि आत्मा ने कभी खाना खाया नहीं, न खा सकता भी है, क्यों, तो परमाणु है उसको कौन खावे, परमाणु को क्या खाया जाता है क्या, तो एक जो थाली में पड़े थे भोजन के परमाणु, वो क्षेत्रांतर होकर के थाली में से पेट में आए, पेट में आए तो उसमें आत्मा में आए, वो बात नहीं है। मैं माने आत्मा, आत्मा में तो नहीं आया, लेकिन बोला ऐसा जाएगा। इस तरह से अपने परिणमन में प्रयोग करना, जो कर्तापना का विषय यहाँ पर विवेचन किया, तो अपने परिणमन में इसका प्रयोग करना। प्रयोग करने से ये बात जितनी समझ में आएगी, उतनी सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से नहीं आएगी। प्रश्न नहीं आया? संचित कर्म मैंने इकट्ठे हुए कर्म, संचित मैंने ग्रहण किए हुए, प्राप्त किए हुए कर्म पुद्गल के परमाणु, कार्मण वर्गणा से, कार्मण वर्गणा सारे लोक में भरी हुई है। जब कोई जीव राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणाम यानी विकारी परिणाम करता है, तब उसी क्षेत्र में जो कार्मण वर्गणा के परमाणु है उसमें से कितने परमाणु, सब नहीं, कितने परमाणु प्रकृति को धारण करता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय नाम गोत्र वेदनी आयुष, आयुष तो एक ही दफे होता है, बाकी सब होता रहता है। जैसे हम रोटी खाते हैं, कोई अकेला गेहूं की रोटी खाएगा, कोई अकेला बाजरे की रोटी खाएगा या अकेला चावल खाएगा, लेकिन उसमें से सप्त धातु रूप परिणमन हो जाता है। चाहे कुछ भी खाओ, कोई अकेला दूध पिएगा, ऐसा नियम लेते ना, हम एक चीज से ज्यादा नहीं लेंगे। कोई अकेला मूंग खाता है, लेकिन जो भी खाएगा उसमें से सप्त धातु रूप परिणमन होगा। बाल भी बनेगा, चमड़ी भी बनेगी, खून भी बनेगा, हड्डी भी बनेगी, मांस भी बनेगा, टट्टी भी बनेगी, सप्त धातु में परिणमन हो जाएगा। ऐसे विकारी परिणाम तो एक रहा, कार्मण वर्गना जो इधर थी उसमें से कुछ परमाणु, कोई ज्ञानावरणी, कोई दर्शनावरणी, कोई मोहनी, कोई अंतराय, कोई नाम कर्म, कोई आयु कर्म, कोई वेदनी कर्म, ऐसे परिणमन कर जाते हैं। तो परिणमन करके आत्मा के एक क्षेत्र के साथ कुछ काल तक संबंध रखता है। जहाँ जहाँ आत्मा जाता है वो साथ में जाता है, भवांतर में जाता है तो साथ में जाता है, उसको स्थिति बंध कहते हैं। कुछ काल की स्थिति लिए हुए वो संयोग करता है। ऐसे संयोग को संचित कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जो प्राप्त किए, इकट्ठे किए, संचित, मैंने कि मैं कितना धन संचय किया, आपने व्यापार किया 25 साल तक तो धन संचय कितना किया नहीं बोलते, मैंने कितनी संपत्ति प्राप्त किया, ऐसे कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो आ चुके हैं उसको संचित कर्म कहते हैं, वो पुद्गल के परमाणु में कार्मण वर्गणा के। और जो आत्मा में राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणाम, विकार परिणाम होता है, उसको भाव कर्म कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा के भाव हैं और कर्म मैंने कार्य है, इसलिए उसको भाव कर्म कहते हैं। और ये संचित कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं, उद्गल द्रव्य, इसलिए उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं। जब निर्जरा होती है, चाहे सकाम निर्जरा हो चाहे अकाम निर्जरा भी हो, समय समय पर नए कर्म प्रकृति धारण करके संबंध करते हैं। और जो उदय में आ गए ऐसे कर्म परमाणु, उस प्रकृति का विपाक करके, मैंने पक करके, पर्याय धारण करके, क्रोध के पर्याय तो क्रोध का धारण करके, फिर वो निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, तो वो कर्म सामान्य हो जाते हैं, वो तो कार्मण वर्गणा में चले जाते हैं।
निर्जरा के बाद भी रहते हैं उसी क्षेत्र में?
नहीं, फिर इसका संबंध, क्षेत्र संबंध भी छूट गया, स्थिति संबंध भी छूट गया, प्रकृति संबंध भी छूट गया और प्रदेश संबंध भी छूट गया। एक बंध के चार पहलू है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो अनुभाग तो उदय आए उस वक्त प्रकट हो गया, अनुभाग खत्म हो गया। अनुभाग मैंने रस, अनुभाग मैंने फलदान शक्ति, तो फल जो उसका प्रकृति थे उसका फलदान दे दिया उदय के काल में, तो ये अनुभाग छूट गया, प्रकृति भी छूट गया, प्रदेश मैंने परमाणु का संख्या था वो भी बिखर गया, और स्थिति भी पूरी हो गई उदय में आने से। आत्मा तो एक जगह रहता नहीं, क्षेत्रांतर तो करता रहता है। एक भाव में भी हम अभी पहले घर में थे, अभी इधर स्वाध्याय हॉल में आए, तो वहाँ कार्बन परमाणु अलग थे हमारे समीप में, इधर दूसरे हैं, और कहीं जाएंगे तो और वहाँ कार्बन परमाणु दूसरे हैं, वो साथ में नहीं आते। जो संचित कर्म है वो साथ में आते हैं। जो कार्बन परगना भरी हुई है वो तो हर जगह भरी हुई है, इसलिए कर्म बनने के लिए कहीं से खींचना पड़ता नहीं है, हर जगह है ही वो। तो हाँ, उसी जगह आ जाता है, जैसा परिणाम करता है उसी जगह से जो कार्बन वर्गना है वो बन जाती है। तो घर के कार्बन वर्गना वाले परमाणु को इधर लेके नहीं आए हम, और इधर के उधर लेके नहीं जाएंगे, वो अपने अपने परिणाम अनुसार अगर परमाणु गति भी करेंगे तो अपने कारण से करेंगे, उसमें आत्मा का निमित्त निमित्त कोई संबंध नहीं है। लेकिन विश्व का कोई कोना भी खाली नहीं है जहाँ कार्बन वगैरह भरी न हो, ऐसा कोई कोना खाली नहीं है।
उल्टे चले तो पूरा विश्व जेल है। उल्टे चले तो पूरा विश्व जेल हो गई
है। हाँ वो तो है ही, इसलिए उस कैद खाने में से निकल करके सिद्धालय में चले जाना, वहाँ भी कार्बन वगैरह तो है। कार्बन वगैरह तो वहाँ भी है लेकिन वो निकम भी है, वहाँ कोई कार्यकारी नहीं है। वही करे, वो पुद्गल परावर्तन कहते हैं कि नहीं कहते हैं अपन, हर पुद्गल ने सभी पर्याय को धारण किया तो कि वो फिर भाई आएगी, अनंत बार आए हैं, अनंत बार वो के वो कर्म आए और निर्जरे भी। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के सकल जगत है ऐठ वत, आखो जगत ऐठू छे, बता परमाणु भोगवी लीधा छे, कोई परमाणु भोगवा विना ना बाकी नहीं, तो ऐठ जेवू आ छे। तो ऐठ में मोह क्या करना, ऐसा कहते हैं। ठीक, भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो लेकिन मुंह में डाल करके फिर बाहर निकाल करके फिर मुंह में डाला जाता नहीं है। करते कभी कभी मुंह में से गिर गया कोई कौन, साथ चबाते चबाते कोई खांसी आई, कोई कुछ हो गया, बाहर निकल गया, वो पकड़ करके फिर मुंह में डालते हैं अपन, क्यों ऐठा है जूठा है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे उनको तुच्छता की दृष्टि से देख करके फेंक देते हैं। ऐसे परमाणु जो भोग उपभोग रूप है ज्ञानी को, वो ऐसे दिखते हैं, उसमें उसको रस आता नहीं है, ऐसी बात है। जैसे झूठे अन्न में रस नहीं आता, भले स्वयं का झूठा हो, दूसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को कहीं पुद्गल परमाणु में रस नहीं आता। हरेक अलग 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 स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म की अलग अलग स्थिति, जब वो बनते हैं तब स्थिति बंद लेकर के बनते हैं, फिर भी उदय में आने से पहले उसमें स्थिति कम भी होती है और बढ़ती भी है, उसको अपकर्षण और उत्कर्षण कहते हैं। और हर एक प्रकृति का अलग अलग है, और एक प्रकृति में भी अलग अलग स्थिति पड़ती है। अभी ज्ञानावरणीय बंदा तीव्र रस से तो उसमें स्थिति ज्यादा भी पड़ेगी, मंद रस से बांधा तो उसकी स्थिति कम पड़ेगी, ज्ञानावरणीय है तो भी, हर एक स्थिति अलग अलग है। ये तो रोग है, बुखार कभी ज्यादा भी चलता है कभी कम दिन भी चलता है, कभी घंटे भर में नॉर्मल होता है, कभी उतरता ही नहीं है, तो दिनों तक महीनों तक चालू रहता है। रोग की स्थिति है अलग अलग, रोग बुखार तो बुखार है, अलग अलग स्थिति से चालू होता है। और एक बात कि जब ये तीन प्रकार की बात आई कि भगवान जिनेंद्र देव ने ये जो आत्मा का कर्तापना है वो तो तीन प्रकार से विवेचन किया है, बात भी हमारी समझ में तो आई। इस विषय का स्वाध्याय करते हुए बौद्धिक स्तर पे ये बात समझ में आ सकती है, आती भी है। अब हमको इसका प्रयोग कैसे करना ये प्रश्न यहाँ अपेक्षित है। क्या तो स्वाध्याय करना ही है तो थोड़ा तलस्पर्शी स्वाध्याय करें। अनुभव गोचर रूप से कैसे प्रयोग किया जाए, या समझे तो सही किंतु इसका प्रैक्टिकल साइड कौन सा है, इस तरह का कोई प्रश्न भी यहाँ अपेक्षित है तो उसका समाधान ऐसा है कि परमार्थ से यानी निश्चय से, तो उसमें हमारा निश्चय स्वरूप इसका निधिध्यासन होना चाहिए। निश्चय स्वरूप का निधि प्रश्न नहीं उठा, इसका कारण है कि हम निश्चय स्वरूप के निधि ध्यासन तक पहुंचे नहीं है। भाव भाषण होता है तो उसका निधि ध्यासन होता है और ध्यान भी होता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे ना तो प्रश्न नहीं उठेगा। निश्चय से मैंने अपना स्वभाव को विजुअलाइज करे तो ऐसा देखने में आएगा कि अरे ये तो स्वभाव रूप परिणमन करने का ही उसका कर्तापना है, उतना ही कार्य करेगा, इसके आगे इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस हद में वो स्वभाव पूरा हो जाता है, इसके आगे मूल आत्मा को मूल स्वरूप को इसके आगे परिणमने का कोई हद नहीं है। फिर भी जो विभाव परिणाम होता है वो तो हद को उल्लंघन करके होता है, इसलिए उसको विभाव यानी विकार के नाम में आता है, विकृत होकर के बाहर आता है। जो विकार है इसका मूल शब्द तो विकृति है, विकृति हो गई, असल नहीं रहा, कोई विकृति आ गई। जैसे चमड़ी तो चमड़ी है लेकिन स्किन डिजीज होता है तो क्या कहते हैं, स्किन डिजीज को क्या कहते हैं, कि चमड़ी का विकार है, ये चमड़ी का विकार है, तो मूल स्वरूप में वो नहीं दिखाई देंगे, विकृत रूप में दिखाई देंगे, उसका कलर चेंज होगा, उसका स्मूथनेस चेंज होगा, ये सब फर्क पड़ जाएगा। वो खून खराब होता है तो लोही विकार कहते कि नहीं कहते हैं, ये पीलिया हो गया या ये होता है या काले दाग हो जाते हैं ना आँख के पीछे, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लोही विकार बोला जाता है, पांडु रोग। तो खून है वो अपने स्वरूप में नहीं रहा, उसमें कुछ ऐसा फेरफार हुआ जो खून के स्वभाव से विरुद्ध है, विकार है वो स्वभाव से विरुद्ध है, इसलिए रागादि भाव है वो स्वभाव से विरुद्ध है। ऐसा परिणमने का कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। पंडित राजमल जी समय सार कलश टीका में कहते हैं, बहुत अध्यात्म भावपूर्ण टीका है, अध्यात्म प्रधानता वाली वो टीका है, तो कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है लेकिन एक गुण भी ऐसा नहीं है जिस कारण से वो विकार और विभाव किया करे, ऐसा एक गुण भी नहीं है। फिर भी होता है, वो स्वभाव को उल्लंघन करके होता है, इसलिए उसमें थकान होती है। स्वभाव रूप परिणाम में थकान होने वाली नहीं है, वो तो एक सेकंड के असंख्य भाग में बहुत तेजी से चक्कर उसका चलता ही रहता है। इसका क्या कारण क्या है? कारण तो वो है कि अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं, अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं, ज्ञान नहीं, और अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं, अपने स्वरूप की सावधानी नहीं, तो होता है। स्वरूप लक्ष्य के अभाव में, स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान के अभाव में ये सब गड़बड़ होती रहती है।
हमारी स्टेज में
और ये अनादि से है, वो कब से है कि अनादि से।
हमारी स्टेज में ऐसा ले सकते हैं कि जन्म मरण का दुख नहीं लगा है, हमारी स्टेज में ऐसा ले सकते हैं कि जन्म मरण का दुख कभी लगा नहीं है।
हाँ, तो
इसीलिए ऐसा उल्लंघन होता है।
मूल में क्या कारण है वो सोचने का, फिर तो कई अनेक प्रकार के कारण है, मूल में क्या कारण है? इस आत्मा को विभाव होने का मूल में क्या कारण है? कि मूल में वो कारण है कि अपना स्वभाव को जाना नहीं, श्रद्धा किया नहीं और आराधन किया नहीं, तो ये हो जाएगा। अनिवार्य रूप से विभाव होते रहेगा क्योंकि अपना मूल स्वरूप के विषय में ही अंधेरा है, यही कारण है। समय सारणी का एक ऐसा प्रश्न चला है कि रागादि विभाव की ऐसी कौन सी अंदर में खानी है, खान कि अनादि काल से अंदर से निकलता ही रहता है, ये क्या बात है? आत्मा में से जो रागादि परिणाम अनादिकाल से चलता रहता है, तो कोई अंदर में खानी भरी है जिसमें से निकलता रहता है, क्या बात है? समझाइए। तो कि अज्ञान रूप खानी है, क्या खानी है? अपने स्वरूप का अज्ञान है, वो एक बड़ी खान है, चलता रहेगा। जहां तक अज्ञान है वहां तक चलता रहेगा, आत्मा का ज्ञान होने से खत्म होने जाएगा। इसलिए यहां हमें ये देखना है कि हमारा मूल स्वरूप से हम अपने आप को देखें तो आत्मा स्वभाव रूप परिणाम करके निज स्वरूप का कर्ता देखने में आएगा, इससे आगे कुछ देखने में नहीं आएगा। फिर राग जो बचा हुआ दिखने में कैसे आएगा? क्योंकि वो परद्रव्यम परभावम है, वो परभाव है, वो आत्मा का भाव नहीं है, ऐसा दिखने में आएगा। शरीर आदि के बिल्कुल भिन्न दिखने में आएगा। इसलिए आत्मा कर्म को करता है, बांधता है, या बाहर में शरीर आदि कोई संयोग का कार्य करता है, ये तो व्यवहार मात्र बोलने की बात है, वास्तव में ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं। तो जिस जिस वक्त हम नो कर्म का कार्य करें, द्रव्य कर्म तो दिखने में नहीं आते, वो तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय होता ही नहीं, लेकिन बाहर के कार्य का जो जितना भी प्रखर प्रसंग बनता है, हम सुबह उठे, मंजन किया, ब्रश किया, नहाया, जो भी नित्य क्रम है उसमें इसका प्रयोग कैसे चलना है? कि परिणाम परिणाम में होता है, आत्मा जानने के सिवा कुछ कर सकता नहीं है, और ये स्वयं हुए जा रहा है। उद्गल के परमाणु की क्रिया कहीं आत्मा की इसमें पहुंच नहीं, पर आत्मा में इसका इसके पहुंचने, परमाणु में आत्मा के पहुंचने और आत्मा में परमाणु के पहुंचने, तो स्वयं परिणमनशील है, परिणमन करता है। एक दूसरे का कर्ता कहना वो व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, और कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव में लेना, इसको ऐसे अनुभव गोचर करना, वो इसका प्रयोगात्मक पहलू है।
मतलब उपयोग वहां ले जाना,
नहीं जैसा है वैसा ज्ञान में आना। जैसे हमने खाना खाया है तो उस वक्त भी हमारा आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता है, ये स्वयं हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो ये आवाज शब्द के पर्याय स्वयं हो रही है, नो कर्म रूप। मेरी आत्मा उसमें कोई करती है सो बात नहीं है, आत्मा नहीं बोलता है, बोल सकता भी नहीं, बोलता बोलता नहीं है क्या, बोल सकता भी नहीं है। इसलिए कोई लोग कभी मजाक भी कर देते हैं कि बोलते जाते हो और कहते हैं कि बोल सकते नहीं हो, ऐसा भी कहेंगे। आत्मा अपना ज्ञान का करता है, बाकी पुद्गल परमाणु की कोई मन वचन काया की क्रिया का आत्मा करता अर्था हो ही सकता नहीं है, ये अशक्य और असंभवित है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि परमाणु स्वयं परिणमनशील होने से अपनी अवस्था को समय समय पर करता रहता है, कोई परमाणु कभी क्रिया वगैरह का होता नहीं। अपने कहने में नवरो एक के परमाणु नवरो पड़े शक नहीं, काम करता करतो तो एनु काम बीजा करे। नवरा को क्या कहते हैं आप हिंदी में, फुर्सत, फुर्सत वाला। कोई परमाणु कभी बिना कार्य फुर्सत वाला बैठा नहीं रहता कि इसका कार्य आत्मा करने को आए, और आत्मा कभी बिना फुर्सत वाला नहीं है कि इसका कार्य कोई परमाणु करने को आए। सब अपने अपने क्रिया में सतत 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 कार्य करते रहते हैं, किसी को किसी का कार्य करने की कोई फुर्सत नहीं है। और कोई कोई भी पदार्थ अपना कार्य दूसरे पदार्थ को करने भी नहीं देगा, करने भी नहीं देगा। अगर कोई करने को आएगा तो धक्का खाएगा। जैसे अज्ञान दशा में जीव पर पदार्थ का कार्य करने को जाता है तो क्या होता है, उसको मार खाता है कि नहीं खाता है, आकुलता को प्राप्त करता है कि नहीं करता है, वही उसका मार है, वही अशांति है। अशांति होगी होगी और होगी ही,
पूरा बोझा उतार देता है।
हाँ,
ये बात तो पूरी बोझा उतार देती
है, खत्म। जिस काल में जो होने वाला होगा सो होगा, आत्मा कर ही नहीं सकता, फिर इसका कोई भय रखने की जरूरत है ही नहीं। पहले तो भय सामने आता है कि हम सावधानी छोड़ देंगे, हम हमारी ड्यूटी छोड़ देंगे, फिर कोई नुकसान आ जाएगा तो, अरे ड्यूटी करते रहो तो भी आ जाएगा और नहीं करते रहो तो भी आने वाला है तो आ ही जाएगा। इस काल में तो सभी के एक तरीके दिन होते ही नहीं है, ये पंचम काल है, ऊपर नीचे अपडाउन अपडाउन आया ही करेगा संयोग में।
क्यों
आती है, इसमें क्या है कि उतनी एक तो सिंसियरिटी नहीं आई, जो समझ के साथ, समझ की जो गंभीरता आनी चाहिए, जो वजन आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि हमारा वजन कहीं और जगह है, प्रायोरिटी चेंज नहीं किया, तो हमारा जो और जगह वजन है वो यहाँ उस वजन आता नहीं है, तो टिकती नहीं वो बात, टिकेगी नहीं।
है बल वाला जीत जाएगा
तो बलवान का दो भाग बढ़िया नो भाग के वाई इच्छा ने तो बलवान होगा वो मारेगा किसका बल है देखो संसार की रुचि का बल है या आत्मा को मुक्त होने की रुचि का बल है बस उसके पर आधारित है सब बात उस तरह से आत्मा करता है तो बात चली अब कहते हैं कि आत्मा भोगता है चौथे पद भोगने वाला कहो अनुभव करने वाला कहो या वेदन करने वाला कहो तीनों शब्द एक अर्थ में है जो जो कुछ क्रिया है वे सभी सफल है जो जो भी क्रिया है वो सभी वे क्रिया सफल है कोई क्रिया निष्फल होती नहीं है इस क्रिया का फल आता है एक भी परिणाम ऐसा नहीं है कि जिसका फल नहीं आए चाहे इस परिणाम का हमें ज्ञान हो या मत हो या इस परिणाम का दूसरे को ज्ञान हो या मत हो परिणाम का फल आने वाला है ही है ये वस्तु स्थिति है जो जो कुछ क्रिया है वे सभी सफल है निरर्थक नहीं है उसका फल नहीं आए ऐसा कभी बनता नहीं है वो सफल ही है सब क्रिया जैसे कोई किसी का खून करने का भाव किया लेकिन खून नहीं किया क्या तो खून नहीं किया इसलिए लौकिक रूप में तो अपराधी नहीं गिना जाता लेकिन जिनेंद्र के दरबार में वो बात चलती नहीं है उसको कर्म बंद गया तो इसका भी कोई खून करेगा कभी दूसरे भाव में क्या है लड़ाई होती है लड़ाई तो हुई अमेरिका और ईरान के बीच में हमको कोई लेना देना है ही नहीं हम तो दो तीन रोटी चार रोटी खाते हैं इसमें क्या लेना देना इससे हाँ लेकिन अमेरिका यहाँ से अटैक करे ना तो सद्दाम हुसैन को मार पड़ेगा या वो खत्म हो जाएगा या कोई इसके पक्ष वाले जो ऐसा करेंगे वो ऐसा करेगा ना तो अमेरिका को ये होगा इसका सैनिका चूर चूर हो जाएगा अपने को लेना देना है ही नहीं न हम लड़ाई में खड़े हैं न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है हमें कोई लाभ नुकसान है ही नहीं लेकिन हम इतने कर्मबंध करते हैं कि ऐसी लड़ाई में हमारा खून खराबा कभी हो जाएगा ऐसे कर्म मानते हैं अनर्थ दंड उसको कहते हैं शास्त्र में क्या कहते हैं उसको अनर्थ दंड अर्थ माने प्रयोजन तुमको कोई प्रयोजन नहीं लेना नहीं देना नहीं क्यों विचार करता है इसका लेकिन अखबार पढ़ने की आदत हो जाती है दो बात अखबार में आती है फिर मस्तिष्क में से निकलती नहीं है चलता रहेगा कितना बड़ा नुकसान इसका कोई हिसाब नहीं है तो है ही संसार में तो ऐसा ही है पग मुक्ता पाप है और देखता जहर है जो कुछ भी करने में आता है इसका फल भोगने में आवे ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है जैसे कोई गेहूं की गेहूं बोएगा ऊपर गेहूं आएगा बगल में बाजरा बोएगा ऊपर बाजरा आएगा जैसा बोएगा वैसा फल आएगा करे थे वो पामे आवे से ने अपने करे थे वो पामे जो कुछ भी करने में आता है इसका फल भी भोगने में आता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। हम उसका दृष्टांत कहते हैं कि जहर खाने से जहर खाने का फल आए बिना नहीं रहता, चाहे जानबूझकर खाए चाहे अनजाने में खाए, जहर खाएगा वो मरेगा, इसमें ऐसा बचाव नहीं चलता कि हमको तो मालूम नहीं था और खा लिया तो हमको नहीं मरना चाहिए, चाहे जानबूझकर खाओ चाहे अनजाने में खाओ। ऐसे आत्मा आत्मरस को छोड़ करके, चैतन्य रस को छोड़ करके, चैतन्य का अमृत रस को छोड़ करके राग रस में जाता है तो उसको जहर खाता है, चाहे वो कितना भी राग मीठा लगे। ये तो पोते का राग था, लड़के का लड़का होता है ना, राग का निमित्त बनता है तो जहर खाने की बात है ऐसा कहते हैं। और अच्छा भोजन खाते वक्त रस लेते हैं बहुत अच्छा लगता है, और खाओ और खिलाओ, हाँ भाई सब जहर खाने की बात है, जितना भी पुद्गल का रस लो इसका फल आएगा और दुख रूपी होगा, और आत्मा का उसमें प्राण घात होता है, इसलिए आत्मा का ज्ञान आनंद का प्राण का ज्ञात घात होने से उसको आत्मा का खून किया था कहने में आता है। इसलिए जो कुछ भी करने में आता है इसका फल भोगने में आए हैं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। जहर खाने से जहर खाने का फल और शक्कर खाने से शक्कर ना फल, अग्नि को स्पर्श करने से अग्नि स्पर्श का फल जलाए और हिम को स्पर्श करने से हिम स्पर्श का फल, जैसे हुए बिना रहते नहीं, होगा होगा और होगा ही, परिणाम कोई निष्फल नहीं जाता, वैसे कषाय आदि के अकषाय आदि जो कोई भी परिणाम आत्मा प्रवर्तता है उसका फल भी होने योग्य ही है और वह होता ही है, ऐसा क्रिया का आत्मा करता होने से उसको भोगता है। इस प्रकार से क्या कहा, दृष्टांत जैसा वैसे कषाय का फल भी आएगा परिभ्रमण, और कषाय का फल भी आएगा मोक्ष, वाय बिना नहीं रहेगा, उसका फल होने योग्य ही है होता ही है, और सारा विश्व ये विभाव परिणाम के फल भोगने का स्थान है। ते भोग्य विशेषणा स्थान के द्रव्य स्वभाव, आखा जगत में जो द्रव्य का स्वभाव है पुद्गल का जीव को परिणाम को भोगने के लिए है, विभाव परिणाम भोगने के लिए, वो क्रिया का आत्मा कर्ता होने से भोगता है, जहाँ कर्तापना है वहाँ इसके फल का भोगतापना अवश्य होता होता और होता ही है। इस तरह से ये चार पद हुआ, पांचवा पद का समझे।